केसेट नंबर 29 यहाँ से शुरू होती है। किताब उनवान अल्लाह के सफ़ीर। ये किताब नाबीना ख्वातीन हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही है, जिसे आपके लिए शमसा गज़ाला रिकॉर्ड कर रही हैं, जिसे आपके लिए मोहम्मद अजहर लतीफ़ पेश कर रहे हैं। किताब अल्लाह के सफ़ीर को खान आसिफ ने तहरीर किया है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ के हवाले से फरमाते हैं कि अजुदन के करीब एक मुल्ला साहब रहते थे। इन्हें अपने इल्म ज़ाहिरी पर बहुत नाज था। दरवेशों को बेइल्म समझकर हमेशा इन्हें हिकारत की नज़र से देखा करते थे। एक दिन मुल्ला साहब हजरत बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर हुए। इस वक्त मजलिस रूहानी में बहुत से लोग मौजूद थे। मुल्ला साहब ने बैठते ही अपनी इल्मियत और हमदानी के किस्से शुरू कर दिए। हजरत बाबा फरीद नेहद दिलजमई के साथ मुल्ला साहब की बातें सुनते रहे। अहले मजलिस को इनका यह अंदाज बहुत गिरा गुजर रहा था, मगर हजरत शेख के एहतराम में सब लोग भी खामोश बैठे रहे। मुल्ला साहब की तरफ से नुमाइश ज़ात का यह सिलसिला बहुत देर तक जारी रहा। फिर जब चंद लम्हों के लिए मुल्ला साहब खामोश हुए तो हजरत बाबा फरीद ने इनसे पूछा, मौलाना ये तो बताइए इस्लाम के कितने रुकन हैं? मुल्ला साहब ने इन इस्तेहज़ाई नज़रों से हजरत बाबा फरीद की तरफ देखा। ये भी कोई सवाल है? इसका जवाब तो मामूली इल्म रखने वाला मुसलमान भी जानता है शेख, कोई आलमाना सवाल पूछिए। मौलाना मुझे तो सिर्फ इस्लाम के रुकन बताइए, हजरत बाबा फरीद ने अपना सवाल दोहरा दिया। इस्लाम के 5 रुकन हैं। मुल्ला साहब के चेहरे से नागवारी का रंग नुमाया हुआ, जैसे वो जबरन इस सवाल का जवाब दे रही हूँ। एक कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा जक़ात और 5वां हज। मगर मैंने तो छठे रुकन के बारे में भी सुना है, हजरत बाबा फरीद ने फरमाया। छठा रुकन कोई नहीं है, यकायक मुल्ला साहब भड़क उठे। आपने जो कुछ सुना है गलत सुना है, ऐसा हरगिज नहीं है, हजरत बाबा फरीद ने तहम्मुल के साथ फरमाया। मैंने मोतबर अहले इल्म से सुना है कि इस्लाम का छठा रुकन रोटी है। ये सुनकर मौलाना खड़े हो गए और निहायत तुंद और तेज लहजे में हजरत बाबा फरीद को मुखातिब करके कहा, अल्लाह ताला फरमाता है कि नसीहत के बाद जालिम कौम के पास ना बैठ, इसलिए मैं यहाँ से जाता हूँ। हजरत बाबा फरीद भी खड़े हो गए और बड़ी मोहब्बत से मुल्ला साहब का हाथ पकड़ लिया। मौलाना इख्तिलाफ राय अपनी जगह, मगर आप इस तरह नाराज होकर तो ना जाएं। हजरत बाबा फरीद कुछ देर तक मुल्ला साहब को मनाने की कोशिश करते रहे, मगर वो दरवेशों को उनकी जहालत का ताना देकर बुरा कहते रहे, यहाँ तक कि मुल्ला साहब ने अपना हाथ छुड़ा लिया और गैज़ो गज़ब का मुजाहरा करते हुए खानकाह से चले गए। मुल्ला साहब के चले जाने के बाद मुरीदों और खिदमतगारों ने उनके नाज़ेबा तर्ज अमल की शिकायत की तो हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, मेहमान कैसा भी तनखू हो मगर मेहमान ही होता है। दरवेश पर मेहमानों की तवाज़ फ़र्ज होती है, तो हमने भी मौलाना की तवाज़ो की। अब ये अलग बात है कि मुल्ला साहब ने हमारी तवाज़ो कबूल नहीं की। खैर, अल्लाह इनका भला करे। मुल्ला साहब हजरत बाबा फरीद की खानकाह से उठकर गए तो फिर वापस नहीं आए। कई माह बाद उन्होंने हज के सफ़र का इरादा किया और पूरी तैयारी के साथ बैतुल्ला की ज्यारत के लिए हिंदुस्तान से रवाना हुए। फिर मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच कर हज की सआदत से मुशर्रफ हुए और 7 साल तक वहीं क़याम किया। इसके बाद वतन वापसी के ख्याल से जहाज में सवार हुए। मौसम साफ और खुशगवार था। जहाज बड़ी सुबह रफ्तारी के साथ समंदर की सतह पर चला जाता था कि अचानक सख्त तूफान आया और पूरा जहाज तबाह हो गया। मुल्ला साहब एक तख्ते पर बैठे हुए किनारे तक पहुंचे, फिर पानी से निकलकर खुशकी में आए। अजीब वीरानी का आलम था। मुल्ला साहब जहाँ उतरे थे वहां खुश्क पहाड़ों का सिलसिला दूर तक चला गया था। न दरख्त थे, न घास थी और न पानी का कोई चश्मा था। मुल्ला साहब 3 दिन भूख और प्यास की हालत में पहाड़ के एक गार में बैठे रहे। अच्छे दिनों को याद कर करके रोते रहे, फिर दुआ के लिए हाथ उठा देते, मेरे पालने वाले मैं किस अजाब में फंस गया हूँ, मुझे इस आफत से निजात दे। 3 दिन बाद यकायक वहां एक शख्स आया जिसके सर पर ख्वान था। इसने आवाज लगाई, मैं रोटी फरोख्त करता हूँ या कोई जरूरतमंद है? आदमजात की आवाज सुनकर मुल्ला साहब की जान में जान आई। 3 दिन के फाकू ने मुल्ला साहब को बहुत कमजोर कर दिया था, फिर भी उन्होंने अपने जिस्म और जान की तमाम ताकतें समेट कर इस अजनबी शख्स को पुकारा, भाई मेरी तरफ आओ, आज इस दुनिया में मुझसे ज्यादा जरूरतमंद इंसान कोई दूसरा नहीं। रोटियां फरोख्त करने वाला गार में दाखिल हो गया और मुल्ला साहब से मुखातिब हुआ, आपको कितनी रोटियां दरकार हैं? मुल्ला साहब ने बड़ी हरीसाना नजरों से इस शख्स की तरफ देखा और निहायत आजाना लहजे में कहने लगे, भाई मैं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैंने 7 हज किए हैं, मगर अचानक मुझ पर यह मुसीबत नाजिल हो गई कि मेरा जहाज तबाह हो गया। मैं 3 दिन से भूखा और प्यासा हूँ, मेरे पास रोटी भी है और पानी भी, इस शख्स ने कहा, मगर मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है। अपनी मजबूरियों का एहसास करके मुल्ला साहब की आंखों में आंसू आ गए। आपकी मजबूरी यह है कि रोटी खरीदने के लिए पैसे नहीं, और मेरी मजबूरी यह है कि मैं एक दुकानदार हूँ, कर्ज का कारोबार नहीं करता। इस शख्स ने किसी रियायत के बगैर साफ साफ कह दिया। मुल्ला साहब चंद लम्हों तक कुछ सोचते रहे और फिर अजनबी दुकानदार से बोले, क्या तुम मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, दुकानदार ने जवाब दिया, मैं एक सहीउल अकीदा मुसलमान हूँ। मुल्ला साहब ने फौरन भूखों को खाना खिलाने की फजीलत पर बात शुरू कर दिया। दुकानदार कुछ देर तक तो मुल्ला साहब की तकरीर सुनता रहा, फिर बड़ी सावगोई से कहने लगा, मैं भूखों को खाना खिलाने के सवाब से वाकिफ हूँ, मगर फिलहाल आपको कीमत के बगैर गजा और पानी फराहम नहीं कर सकता। ये कहकर वो दुकानदार जाने लगा। मुल्ला साहब ने चीख कर कहा, तू क्या बेरहम मुसलमान है कि एक बेयारो मददगार इंसान की मजबूरियों का मजाक उड़ा रहा है? ये सुनकर दुकानदार पलट आया और मुल्ला साहब के तंज का जवाब देते हुए कहने लगा, अगर मैं इसी तरह जरूरतमंद लोगों पर रहम खाऊं तो चंद रोज में मेरा कारोबार खत्म हो जाएगा और फिर मैं खुद लोगों से रहम की भीख मांगने लगूंगा। मुल्ला साहब नए अंदाज से इसकी खुशामद करने लगे। आखिर दुकानदार ने कहा, चलिए मैं आप पर रहम खाता हूँ, आप मुझे अपने सातों हजों का सवाब बख्श दें, मैं इसके बदले में आपको पानी और रोटी दे दूंगा। मुल्ला साहब ने सोचा कि जबानी तौर पर कह देने से सवाब खत्म नहीं होता, मेरे सातों हज बरकरार रहेंगे और मुझे भूख और प्यास से निजात भी मिल जाएगी। ये सोचकर मुल्ला साहब ने दुकानदार से कहा, मैंने तुझे अपने सातों हजों का सवाब दिया। दुकानदार ने खान मुल्ला साहब के सामने रख दिया। मुल्ला साहब ने जी भर कर खाना खाया और सैर होकर पानी पिया। फिर जब होशो आवाज बहाल हुए तो उन्होंने दुकानदार से पूछा, तुम कहाँ रहते हो और क्या यहाँ कोई आबादी भी है? मैं सिर्फ रोटी फरोख्त करता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। ये कहकर दुकानदार ने खाली बर्तन उठाए और गार से निकल गया। मुल्ला साहब इसके ताकुब में भागे ताकि किसी आबादी तक पहुंच सके, मगर उनकी ये कोशिश राय गा गई। दुकानदार पहाड़ों के पेचो खम में कहीं गायब हो गया। मुल्ला साहब कुछ देर तक उसे ढूंढते रहे और फिर इस ख्याल से गार में वापस आ गए कि कहीं रास्ता ना भूल जाएं और इस अजनबी इलाके में कोई नई आफत नाजिल ना हो जाए। मुल्ला साहब एक उम्मीद मुहिम पर अजनबी का इंतजार करने लगे, मगर 3 दिन तक वो नहीं आया। भूख और प्यास की शिद्दत से एक बार फिर मुल्ला साहब की हालत गैर हो गई। आखिर 4थे दिन वही दुकानदार सर पर खान रखे नमूदार हुआ। मुल्ला साहब किसी भिखारी की मानिंद इसके सामने गिड़गिड़ाने लगे, आप तो आज भी तही दस्त और तही दामन हैं। दुकानदार ने मुल्ला साहब से कहा, अब आपके पास फरोख्त करने के लिए क्या बाकी रह गया है? मेरे रोजे बाकी हैं, मुल्ला साहब ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा। दुकानदार ने इन्हें खाना खिला दिया और मुल्ला साहब के तमाम रोजों का सवाब लेकर चला गया। 3 दिन बाद जब मुल्ला साहब भूख और प्यास की शिद्दत से चीखने लगे तो वो दुकानदार सर पर खान रख के गार में दाखिल हुआ और मुल्ला साहब की जकात का सवाब लेकर वापस चला गया। मुल्ला साहब फिर भूख और प्यास का शिकार हो गए। 4थे दिन वही शख्स उसी अंदाज से आया और तमाम उम्र की नमाजों के सवाब के बदले में एक वक्त की रोटी और पानी देकर चला गया। 3 दिन के वक्फे के बाद जब 5वीं बार वो शख्स घर में दाखिल हुआ तो मुल्ला साहब उसे देखते ही चीख चीख कर रोने लगे। मैं अपनी नमाज, रोजा, जक़ात और हज तेरे हाथों फरोख्त कर चुका, अब तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब तक आपने सारे वादे जबानी किए हैं, ये कहकर अजनबी शख्स ने खान जमीन पर रख दिया। मैं कागज, कलम और दवात लेकर आया हूँ, आपने जो कुछ बेचा है उसकी तहरीरी सनद मुझे दे दीजिए। मुल्ला साहब ने ये इबारत कागज पर दर्ज कर दी। मैंने एक वक्त की रोटी और पानी के बदले में इस शख्स के हाथों अपने सातों हजों का सवाब फरोख्त किया, फिर जिंदगी भर के रोजों का सवाब फरोख्त किया, फिर सारी उम्र की जकात का सवाब फरोख्त किया और आखिर में तमाम नवाजों का सवाब फरोख्त कर दिया, और आज मैं एक वक्त की रोटी और पानी के बदले में ये तहरीर लिखकर दे रहा हूँ। आखिर में मुल्ला साहब ने अपना नाम और मुकम्मल पता दर्ज कर दिया। जब दस्तावेज मुकम्मल हो गई तो अजनबी शख्स ने खान मुल्ला साहब के सामने रख दिया। मुल्ला साहब खाने के दौरान ये सोचकर मुस्तरिब रहे कि आज के बाद अजनबी शख्स यहाँ नहीं आएगा, फिर 4थे दिन मिलने वाली रोटी और पानी का आसरा भी खत्म हो जाएगा। ये ख्याल मुल्ला साहब के लिए नहायत तकलीफ दे था। उनके जहन में मुख्तलिफ ख्यालात उभर रहे थे और वो इस अजाब से निजात हासिल करने के लिए कोई तदबीर सोच रहे थे। आखिर खाना खत्म हुआ तो मुल्ला साहब ने हाथ जोड़कर इस अजनबी शख्स से कहा, खुदा के वास्ते मुझे बता दो कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो, ताकि मैं तुम्हारे साथ वहां चलूं और 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करूं। अब मेरे पास फरोख्त करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा है। ने मुल्ला साहब का तहरीर करता कागज जेब में रखा और अपने बर्तन उठाकर जाने लगा। मुल्ला साहब ताजा दम थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो भागकर अजनबी को पकड़ लेंगे। फिर जब वो दौड़े तो दुकानदार भी भागने लगा। कुछ दूर जाकर एक जगह अजनबी ने ठोकर खाई और जमीन पर गिर गया। मुल्ला साहब पीछे थे, उन्होंने इस मोहलत को गनीमत जाना और ज्यादा तेज दौड़ने की कोशिश की, मगर इत्तेफाक से उन्होंने भी ठोकर खाई और गिर पड़े। अजनबी शख्स ने बर्तन समेटे और इससे पहले कि मुल्ला साहब संभलने की कोशिश करते, वो भागकर नजरों से ओझल हो गया। मुल्ला साहब अपनी नाकामी पर अफसोस करने लगे। फिर जब उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो समंदर सामने था। मजबूरन किनारे पर बैठकर किसी किश्ती या जहाज का इंतजार करने लगे। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि एक जहाज नजर आया। मुल्ला साहब ने अपना अमामा उतारकर दीवानावार हवा में लहराया और चीख चीख कर मदद के लिए पुकारने लगे। इत्तफाक से जहाज के किसी मुसाफिर की नजर मुल्ला साहब पर पड़ी और फिर नाखुदा ने अपने सफीने का रुख साहिल की तरफ मोड़ दिया। खुशकिस्मती से यह जहाज हिंदुस्तान की तरफ जा रहा था और इसमें हिंदुस्तानी हाजी सवार थे। जहाज के मुसाफिरों ने मुल्ला साहब की खूब खातिर मदारत की, यहाँ तक के मुल्ला साहब खैर आफियत के साथ घर पहुंच गए और बीवी बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर एक दिन मुल्ला साहब अपनी रियाजत और इबादत का हाल अहवाल सुनाने के लिए हजरत बाबू फरीद की खिदमत में हाजिर हुए। इस वक्त हजरत शेख की खानकाह में बड़े बड़े उलमा और मशाइख मौजूद थे। मुल्ला साहब को देखते ही हजरत बाबू फरीद इनकी ताजीम के लिए खड़े हो गए और मिजाज पुरसी करते हुए फरमाया, आइए मुल्ला साहब, बहुत दिनों में तशरीफ लाए, हम तो हमेशा आपको याद किया करते थे, आखिर क्या वजह थी कि इतने अरसे तक आपका दीदार नहीं हो सका। मुल्ला साहब ने हजरत बाबा फरीद की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बड़ी बेदिली और नागवारी के साथ मुसाफे किया और हजरत बाबा फरीद के करीब ही बैठ गए। उनके बैठने का अंदाज बड़ा मुतकब्बिराना था। हाजरी ने मजलिस को मुल्ला साहब की अदा सख्त नागवार गुजरी। देखने वालों को महसूस हुआ कि जैसे मुल्ला साहब हजरत बाबा फरीद के हमसर हैं या इनसे भी ज्यादा मर्तबा रखते हैं। कई उलमा और मशाइख ने चाहा कि वो मुल्ला साहब को टोके और उनसे कहें कि मसनद से उठकर हजरत शेख के सामने 10 बस्ता बैठे, मगर हजरत बाबा फरीद के रूबो जलाल के बाइस किसी को इजहार की जुर्रत ना हो सकी। हाँ मुल्ला साहब, आपने बताया नहीं कितने दिनों तक कहाँ रहे, हम तो आपके दीदार को तरस गए थे, हजरत बाबा फरीद ने नहायत मुशफ़िकाना लहजे में फरमाया। मैं यहाँ होता तो आता, मुल्ला साहब ने इंतहाई खुश्क लहजे में जवाब दिया, आखिर पता तो चले कि आप कहाँ तशरीफ ले गए थे। हजरत बाबा फरीद के होंठों पर वही जान फिजा तबस्सुम नुमाया था। मैं हिंदुस्तान में मौजूद नहीं था, मुल्ला साहब के चेहरे से नखुवत गुरूर का रंग झलक रहा था। हज करने गया था, 7 साल तक मक्का मौजमा में मुकीम रहा, 7 बार मदीना मुनवरा की जियारत की और 7 हज अदा किए। हरमैन शरीफैन में नमाजों रोजों का जो ज्यादा सवाब मिलता है वो सब मैंने हासिल किया। 7 साल बाद वतन लौटा हूँ, वापसी में जहाज की तबाही का सदमा भी उठाया, मगर हक ताला के करम से रास्ते की मुसीबतें खत्म हुई और मैं बखैर व आफियत घर पहुंच गया। अहलो अयाल को खुशो खुर्रम और सलामत पाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुल्ला साहब की रुदा सुनकर हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, मुल्ला साहब वाकई आप तो बहुत खुश नसीब हैं, 7 हज किए, 7 बार मदीना मुनवरा की ज्यारत की, 7 साल तक हरमैन शरीफैन में नमाजें पढ़ी, 7 रमजानों के रोजे रखे, सुबहान अल्लाह आपने बड़ी सआदतें हासिल की, अब तो आप हमसे नाराज नहीं हैं। मैं आपसे खफा ही कब हुआ था, मुल्ला साहब ने इसी खुशकी और बेरुखी का मुजाहरा किया। 7 साल पहले आप यहाँ से नाराज होकर गए थे, हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, मैं उसी खफगी का जिक्र कर रहा हूँ। मुल्ला साहब ने हजरत बाबा फरीद का आजाना तर्ज अमल देखा तो कुछ और मगरूर हो गए। बड़ी बेनियाजी के साथ कहने लगे, मुझे तो कुछ याद नहीं, आप याद दिलाएं तो शायद याद आ जाए। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, मैंने आपसे सवाल किया था कि इस्लाम के कितने रुकन होते हैं, जवाब में आपने 5 मारूफ अरकान का जिक्र किया था, मगर मेरा इसरार था कि 6ठा रुकन रोटी है, आप इसी बात पर खफा होकर चले गए थे और जाते वक्त आपने कुरान करीम की यह आयत मुकद्दसा भी पढ़ी थी कि नसीहत करने के बाद जालिमों के पास ना बैठो, गोया इस तरह आपने हमें जालिम करार दे दिया था। इस बात का हमें बड़ा सदमा था, फिर भी हम आपको रोजाना याद करते रहते थे। ये सुनकर मुल्ला साहब जोर से हंसे, उनकी हंसी का अंदाज भी मजाक उड़ाने वाला था। हाँ मुझे याद आया, मैं अब भी यही कहता हूँ कि दरवेश लोग अपनी कमिलमी के सबब ऐसी बातें कह जाते हैं जो जो शरीयत के खिलाफ होती हैं। इस्लाम में कोई छठा रुकन नहीं है। मौलाना, अगरचे मैं बेइल्म या कम इल्म हूँ, मगर मैंने ये बात लिखी हुई देखी है। हज़रत बाबा फरीद ने हाजरी ने मजलिस से कहा, मैं कुछ देर के लिए तन्हाई चाहता हूँ। खलबत होते ही हजरत बाबा फरीद ने वो किताब मुल्ला साहब के हवाले कर दी। मुलाहिजा फरमाइए। मुल्ला साहब की पेशानी पर बल नुमाया थे। उन्होंने हजरत बाबा फरीद के हाथ से किताब लेकर वक्त गर्दानी शुरू कर दी। फिर इंतहाई नागवार लहजे में बोले, ये क्या मजाक है? आपने मुझे किताब दी है या सादा औराक का दफ्तर? इसमें कोई तहरीर तो कजा किसी हुर्फ का भी निशान नहीं है। मौलाना, आगे देखिए, हजरत बाबा फरीद ने फरमाया। मुल्ला साहब किताब की वक्त गर्दानी करते रहे, हर वक्त सादा था। इससे पहले कि मुल्ला साहब फिर किसी मजाक का जिक्र करते, यकयक उनकी नजर एक इबारत पर पड़ी। ये वही तहरीर थी जिसमें मुल्ला साहब ने अपनी जिंदगी भर की इबादतों का सवाब एक नान फरोश के हाथों फरोख्त कर डाला था। मुल्ला साहब चंद लम्हों तक हैरत और सुकूत के आलम में बैठे रहे, फिर एक जोर की चीख मारी और हजरत बाबा फरीद के कदमों में गिर पड़े। शेख, मैंने आप पर बड़ा जुल्म किया। मुल्ला साहब रो रो कर अपनी ज्यादतियों का एतराफ कर रहे थे। उठे मुल्ला साहब, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हजरत बाबा फरीद ने मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, एक मामूली सा इख्तिलाफ था, वो आज दूर हो गया। मुल्ला साहब अपने गुरूर, तकबुर, झूठी शान और जारहाना रवेश से ताइब हुए और हजरत बाबा फरीद के गुलामी का तौक अपनी गर्दन में डाल लिया। मुरीद होने के बाद किसी ने इन्हें बोलते नहीं देखा। जब तक जिंदा रहे हर वक्त रोते रहते थे। इस बुजुर्गाना शान के बावजूद हजरत बाबा फरीद के इनकिसार का यह आलम था कि अपनी मजालिस में आम लोगों के साथ चटाई पर बैठते थे, किसी कुर्सी या मसनद पर कभी जलवा अफरोज ना होते। आपकी महफिल रूहानी में अदना से अदना इंसान भी मुअज्जिज तरीन फर्द मालूम होता था। कभी किसी फाजिर और फासिक को भी यह एहसास नहीं होने दिया कि वो किसी जलील कदर हस्ती से मुखातिब है। ये एक बार हजरत वाला के पांव में तकलीफ थी जिसके सबब जमीन पर नहीं बैठ सकते थे। मजबूरन मजलिस में एक चारपाई पर तशरीफ फरमा हुए, मगर आपको निशित का यह अंदाज पसंद नहीं था, इसलिए दर्स के दौरान बार बार हाजरीन से माजरत करते हुए फरमाते थे, अगर मुझे ये मजबूरी लाहक ना होती तो मैं हरगिज इस ऊंची जगह पर ना बैठता। आपके खुलूस और इनकिसार का ये मुजाहरा देखकर हाजरीन ने मजलिस रोने लगे। अल्लाह आपको सेहत बख्शे कि हमारी जिंदगी तो आप ही के दम से वापस्ता है। हजरत बाबा फरीद की इबादत और रियाजत का ये आलम था कि ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते थे, हर रात दो कुरान शरीफ खत्म फरमाते थे, नमाज के अलावा तवील सीधे अदा करते थे। रमजानुल मुबारक में हर रात तरावी के दौरान दो कुरान शरीफ सुनाया करते थे। आखिर उम्र में तरावी बैठकर पढ़ते थे, मगर फर्ज नमाज खड़े होकर अदा करते थे। अक्सरों पेशतर इस्तगराक और जज्ब की कैफियत तारी रहती। इसी हालत में किसी खिदमतकार ने अर्ज किया, शेखजादा निजामुद्दीन ने फला शख्स की मार्फत आपको सलाम भेजा है। शेखजादा निजामुद्दीन हजरत बाबा फरीद के सबसे महबूब साहबजादे थे और पटियाली में रहते थे। कौन निजामुद्दीन? हजरत बाबा फरीद ने खिदमतगार की बात सुनकर अर्ज किया। खिदमतगार हैरान और परेशान खड़ा रहा, आपके महबूब फर्जंद? कौन फर्जंद? हजरत बाबा फरीद ने खादिम से दरियाफ्त किया। आखिर कई बार के समझाने पर आपने अपने साहबजादे को पहचाना, फिर फरमाया, निजामुद्दीन खैरियत से तो है। फिर यही इस्तगराक और जज्ब की कैफियत आपको राह फना से मंजिल बका की तरफ ले गई। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि पीरो मुर्शिद को खल्ला का मर्ज लाहक हुआ और फिर इसी मर्ज में आपने इंतकाल फरमाया। खल्ला एक ऐसी बीमारी है जिसमें पहलू और जोड़ों का दर्द यकायक हमलावर होता है। हाजरी ने मजलिस में से किसी शख्स ने हजरत निजामुद्दीन औलिया से पूछा कि क्या आप पीरो मुर्शिद की वफात के वक्त मौजूद थे? इस सवाल पर हजरत निजामुद्दीन औलिया की आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर इसी अश्क्रेजी के दौरान आपने फरमाया, हजरत शेख ने मुझे शवाल के महीने में दिल्ली रवाना किया था और आपकी वफात 5 मुहर्रम को हुई थी। विसाल के वक्त पीरो मुर्शिद ने मुझे याद फरमाया था। किसी ने कहा, वो तो दिल्ली में है। ये सुनकर आपने फरमाया कि मैं भी हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के इंतकाल के वक्त हांसी में था। हजरत निजामुद्दीन औलिया ये वाकया बयान करते वक्त रोते जाते थे। आपकी कैफियत देखकर हाजरी ने मजलिस पर भी गिरिया उतारी हो गया था। कोई आंख ऐसी ना थी जो फिराक शेख का जिक्र सुनकर भीग ना गई हो। मुख्तसर से वक्फे सुकूत के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, पांचवी मुहर्रम को मर्ज की शिद्दत बढ़ गई। हजरत शेख ने इशा की नमाज बाजमात अदा की और फिर भी होश हो गए। एक घंटे के बाद होश में आए तो हाजरीन से पूछा कि क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ ली है? सैयदी, आप नमाज बाजमात अदा कर चुके हैं, खुदाम ने दस्त बस्ता अर्ज किया। मैं दोबारा इशा की नमाज पढ़ना चाहता हूँ। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, अल्लाह ही जानता है कि फिर क्या हो। ये कहकर आपने दोबारा नमाज अदा की और फिर बेहोश हो गए। इस बार बेहोशी का वक्फा ज्यादा तवील था। दूसरी मरतबा होश आया तो खुदाम से पूछा, क्या मैंने ईशा की नमाज पढ़ ली है? खुदाम ने अर्ज किया, सैयदी, आप दो बार नमाज अदा कर चुके हैं, मैं एक बार और नमाज पढ़ना चाहता हूँ। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, अल्लाह ही जानता है कि फिर क्या हो। ये कहकर आपने तीसरी बार ईशा की नमाज अदा की और फिर सिजदे की हालत में खालिक़े हकीकी से जा मिले। हजरत बाबा फरीद ने नमाज ही से अपनी जिंदगी का आगाज किया और नमाज ही में आपकी सांसों का शुमार खत्म हुआ। सरवर कौनैन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुकद्दस है कि नमाज मोमिन की मेराज है। हजरत बाबा फरीद को भी ये मेराज हासिल हुई और इस शान से कि आखिरी सजदा अदा करने के बाद आपकी आंखों ने कोई दूसरा मंजर नहीं देखा। हजरत निजामुद्दीन औलिया से दरियाफ्त किया गया कि वफात के बाद हजरत बाबा फरीद की उम्र मुबारक क्या थी? 95 साल। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अश्क बार आंखों के साथ फरमाया, इंतकाल के वक्त हजरत शेख की जबान मुबारक पर यह कलमात जारी थे, या हयो या कयूम। हजरत बाबा फरीद 666 हिजरी में दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत बाबा फरीद के तमाम साहबजादों का इस बात पर इत्तेफाक था कि आपको अजूदन की फसील के बाहर उस मुकाम पर सुपरदिखाक किया जाए जहां शुहदा मदफून है। इसी गर्ज से आपके जनाजे को फसील के बाहर ले जाया गया। अभी नमाज जनाजा का एहतमाम किया जा रहा था कि ऐन मौके पर आपके महबूब तरीन साहबजादे हजरत शेख निजामुद्दीन तशरीफ ले आए। उस वक्त वो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के मुलाजिम थे और पटियाली में मुकीम थे। शेखजादा निजामुद्दीन ने कुछ दिन पहले ख्वाब में देखा था कि वालिद मोहतरम उन्हें याद फरमा रहे हैं। आपने फौरन ही सुल्तान से रुख्सत ली और अजुदन रवाना हो गए। शेखजादा निजामुद्दीन उसी रात अजुदन पहुंचे जिस रात हजरत बाबा फरीद का विसाल हुआ था। आपने शहर में दाखिल होने की बहुत कोशिश की मगर तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे, इसलिए मजबूरन पूरी रात शहर के बाहर गुजारी। वफात से पहले हजरत बाबा फरीद बार बार फरमाते थे, निजामुद्दीन आ तो गया है मगर क्या फायदा कि अब इससे मुलाकात नहीं हो सकती। फिर जब सुबह हुई और शेख निजामुद्दीन शहर में दाखिल होने के लिए फसील के दरवाजे तक पहुंचे, सामने से हजरत बाबा फरीद का जनाजा आ रहा था। शेख निजामुद्दीन ने बेमिसाल सब्र ज़ब्त का मुजाहरा किया मगर वालिद मोहतरम की मोहब्बतें याद करके आपकी आंखें अशकों से लबरेज हो गईं। फिर भाइयों से पूछा कि हजरत शेख को कहाँ आसूदा खाक करोगे? फसील के बाहर जहाँ शुहदा की कब्रें हैं। भाइयों ने जवाब दिया, ये वही मुकाम है जहाँ हजरत शेख जिक्र इलाही में मसरूफ रहते थे। अगर तुमने हजरत शेख को फसील के बाहर दफन किया तो कोई भी तुम पर एतबार नहीं करेगा, भाइयों की बात सुनकर शेख निजामुद्दीन ने कहा। जो अकीदतमंद भी हजरत शेख की जियारत को आएगा वो बाहर से ही फातिहा पढ़कर चला जाएगा। अलफर्ज, शेख निजामुद्दीन के मशवरे से जनाजा फसील के अंदर लाया गया और उस जगह दफन किया गया जहां आज आपका मजार मुबारक मौजूद है। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि एक शख्स ने हजरत शेख से अर्ज किया कि अगर हुक्म हो तो मस्कीनों का वो हुजरा जो लकड़ी और गारे से बना हुआ था उसे पुख्ता ईंटों से तामीर करा दूं। जवाब में हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, 7 साल पहले मैंने अहद किया था कि ईंट पर ईंट नहीं रखूंगा। अलगर्ज, जब हजरत शेख का इंतकाल हुआ तो उसी हुजरे को तोड़कर आपको उसी जगह दफन किया गया। आपका रोजा मुबारक उसी मुकाम पर है जहां ये हुजरा मौजूद था। हजरत निजामुद्दीन औलिया का बयान है कि हजरत शेख की लहद के लिए कच्ची ईंटें तक मौजूद नहीं थी, मजबूरन पीरो मुर्शिद के मकान से चंद कच्ची ईंटें निकाल कर लहद में लगाई गईं। यह है इस मर्द फकीर की आखिरी आरामगाह जिसके सामने बड़े बड़े बाजबरूत शहनशाह सर झुकाए बैठे रहते थे। पहली बीवी नजीबुन्निसा से हजरत बाबा फरीद की 7 औलादें थी। छह बच्चे कमसिनी में इंतकाल कर गए। सिर्फ बीबी शर्फुन्निसा जवानी की मंजिल तक पहुंची। आप मशहूर बुजुर्ग हजरत मखदूम अली अहमद साबिर कलीरी की शरीक हयात थी। दूसरी बीवी खातून बेगम से 10 औलादें हुई। हजरत शेख शहाबुद्दीन गंजे इल्म, ये आपके फर्जंदे अकबर थे। हजरत शेख निजामुद्दीन शहीद, हजरत बाबा फरीद इन्हें सबसे ज्यादा चाहते थे। शेख निजामुद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अहद में रणथंभौर के मुकाम पर शहीद हुए। हजरत शेख बदरुद्दीन सुलेमान, बाद तज़किरा नवीसों के ख्याल में ये हजरत बाबा फरीद के सबसे बड़े साहबजादे थे। हजरत शेख मोहम्मद याकूब, बाज़ रिवायतों के मुताबिक अमरोहा जाकर मर्दान गैब में शामिल हो गए थे। हजरत बीवी फातमा मौलाना बदरुद्दीन इसहाक की अहलिया थी, जिनका मज़ार मुबारक दिल्ली में है। हजरत बीवी शरीफा, जिनका इंतकाल बचपन में हो गया था। हजरत शेख अब्दुल्ला बयाबानी, जिन्हें मुफसिदीन की एक जमात ने बचपन ही में शहीद कर दिया था। हजरत बीबी मस्तूरा, जिनका इंतकाल शादी के बाद हुआ। उनके शौहर का नाम शेख उमर सूफी था। हजरत बीबी हाजरा और हजरत बीबी जैनब, इन दोनों साहबजादियों का इंतकाल शेर ख्वारगी के जमाने में हुआ। हजरत बाबा फरीद की नस्बी औलादे 17 थी, मगर रूहानी फर्जंदों का कोई शुमार नहीं। अकीदत और गुलामी का ये सिलसिला हशर तक जारी रहेगा। हजरत बाबा फरीद के हयात और दवाम का जिंदा सबूत यह है कि जब साहिब कना अमीर तैमूर हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ, तो सबसे पहले इसने आपके मजार मुबारक पर हाजिरी दी। फातह एशिया अमीर तैमूर के बारे में मशहूर है कि वो लरजंदे जहां था और बड़े बड़े सलातीन इसके नाम से खौफजदा रहते थे। मगर देखने वालों ने देखा कि जब अमीर तैमूर हजरत बाबा फरीद की बारगाह में हाजिर हुआ, तो आपके जलाल रूहानी के असर से कांप रहा था। फिर इसी फातह एशिया की नस्ल में मुगल शहनशाह जलालुद्दीन अकबर पैदा हुआ। हरचंद शेख मुबारक और इसके बेटों अबुल फजल और फैजी ने अकबर को खुदा बनाने की कोशिश की थी, मगर मुगल शहनशाह जिंदगी भर बुजुर्गान दीन के हल्के असर से आजाद ना हो सका। इसने कई बार हजरत बाबा फरीद के मजार मुबारक पर हाजिरी दी और अजूनन का नाम बदलकर पाक पटन रखा। आज ये शहर इसी अकीदत की यादगार है। हजरत केसेट नंबर 29 का यहाँ इख्तिताम होता है, और साथ साथ हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के हालात जिंदगी भी यहाँ इख्तिताम पजीर होते हैं। बाकी किताब अब आप केसेट नंबर 30 में समाप्त फरमाइए, जिसमें हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बारे में बयान किया जाएगा।